कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव राधा माधव श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री श्री कृष्ण बलराम के श्री श्रीनिताय गौर सुंदर के ग्रंथराज श्रीमद भागवत की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 और अध्याय का शीर्षक है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। तो श्लोक संख्या 21 से लेकर 25 तक है, तो मैं पढ़ूंगा और आखिरी श्लोक हम उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 25 का उच्चारण करेंगे। तो 21 नंबर श्लोक इस प्रकार से है, अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम यशपि तश वै जंतुर मृत्युर्ग्रस्त अमरो भवेत। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो जिसे पीकर मरणासन्न व्यक्ति भी अमर हो जाए। तो ये श्लोक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगला श्लोक, क्षिप्त्वा क्षिरो ददो सर्वा विरुत्रण लतौषधि मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सहाएन मया देवा निर्मन्थ धमन मतन्द्रितः क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्यायुयं फलग्रह। अनुवाद, हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां तृण लताएं तथा औषधियां डाल दो, तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। उसका तात्पर्य भी है छोटा सा। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां लताएं तृण तथा वनस्पतियां डालकर दूध को मथा जाता है, जिस तरह मक्खन निकालने के लिए दूध को मथा जाता है, तो वनस्पतियों तथा औषधियों के सक्रिय तत्व दूध से मिल जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अमृत मिलता है। श्लोक संख्या 24, यूयम तनु यूयम तदनुमोधध्वम यदि छन्त्य सुरासुरा न सरम्भेन सिद्ध्यन्ति सर्वार्था सांत्वया यथा। अनुवाद, हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से विक्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तो 25वां श्लोक आप मेरे पीछे दोहराइए, न भेतव्यम कालकूटाद विषा जलधि संभवात् लोभ कार्यो नवो जातु रोष कामस्तु वस्तुषु। दोहराइए, न भेतव्यम कालकूटात् विषा जलादि संभवात् लोभ कार्यो नवो जातु। माताजी, न भेतव्य कालकूटाद् विषा जलादि संभवात् लोभ कार्यो नवो जातु शब्दार्थ न नहीं भेतव्याम डरना चाहिए कालकूटात कालकूट से विषात विष से जलदि क्षीर सागर से संभवात प्रकट हुए लोभ लालच कार्य कार्य न नहीं वह तुमको जातो किसी समय रोष क्रोध काम विषय वासना तो तथा वस्तुषु वस्तुओं में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के। तो अनुवाद इस प्रकार से है, क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है, और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, न ही उत्सुक होना होगा और न ही क्रुद्ध होना होगा। तात्पर्य ऐसा लगता है कि क्षीर सागर के मंथन से अनेक वस्तुएं उत्पन्न होंगी, जिनमें विष, बहुमूल्य रत्न, अमृत तथा अनेक सुंदरियां सम्मिलित है, किंतु देवताओं को सलाह दी गई थी कि वे रत्नों तथा सुंदरियों के प्रति लोभ न दिखाएं, अपितु धैर्य पूर्वक अमृत की प्रतीक्षा करें। वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना है। ओम अज्ञान तिमिरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम यश पीतस वै जंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत। तो श्रीमद् भागवतम वैष्णवों का प्राण है, सारे शास्त्र कहते हैं, और हमारे आचार्यगण श्रीमद् भागवतम पर सर्वाधिक जोर देते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में स्वयं ही कहा गया है यद वैष्णवानाम प्रियम, कि ये जो भागवत ग्रंथ है वो वैष्णवों को सर्वाधिक प्रिय है। भागवतम घोषित करता है, 12वें स्कंद में ये वर्णन आता है कि आपको किसी अन्य पुस्तक या ग्रंथ को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है यदि आपका अनुराग श्रीमद् भागवतम से हो जाता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु या महाप्रभु के परंपरा के जितने भी आचार्य गण हैं, उन्होंने इस भागवत श्रवण के ऊपर सर्वाधिक बल प्रदान किया है और सबको प्रेरित किया है कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम के द्वारा भगवान कृष्ण की जो अमल गाथा है उसको श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को भी सदैव प्रेरित करते थे। प्रभुपाद कहा करते थे कि ये 7 दिन का भागवत कथा क्या है। प्रभुपाद कहते थे नित्यम भागवत सेवया, कहते भागवतम का श्रवण नहीं करोगे तो कृष्ण की सेवा कैसी करोगे। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे और प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते समय कई सारे भक्त बैठे हुए थे, तो मंदिर का टेंपल कमांडर आता है और भक्तों को उठाकर ले जाता है प्रभुपाद के प्रवचन से। तो प्रभुपाद कहते कि क्या कर रहे हो तुम, तो वो भक्त कहता है कि मैं इन सबको सेवा में ले जा रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं ये लोग भागवतम नहीं सुनेंगे तो सेवा की सही मनोवृत्ति या एटीट्यूड कैसे उनमें विकसित होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भागवतम श्रवण के ऊपर जोर दिया है, और प्रभुपाद ही क्या हमारे परंपरा के जितने भी आचार्य हैं उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है और दूसरों को भी प्रेरित किया है। इवन जो वैष्णवानाम यथा शंभु, जो महादेव है वो अपनी भार्या पार्वती के समेत सदैव भागवतम श्रवण करने में और भागवतम का गुणगान करने में लगे रहते हैं। इसी कारण से तो वो वैष्णवानाम यथा शंभु कहलाते हैं कि शिवजी ऐसे वैष्णव हैं कि जो सदैव एक वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमद् भागवतम का गान करते हैं और उनकी जो भारिया है पार्वती देवी एक चित्त होकर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करती हैं। तो इसी कारण से हमारे लिए ये सब प्रेरणा है। और ऐसा जो भागवतम है वो भगवान कृष्ण से क्या है, अभिन्न है। इसलिए व्यासदेव कहते हैं इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, कि ये जो भागवतम है पुराणम ब्रह्म सम्मितम। ब्रह्म सम्मितम का अर्थ है साक्षात भगवान है, कृष्ण से अभिन्न है। और ये गायत्री के ऊपर भाष्य है, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्टते, कि सारे वेद उपनिषद आदि का जो सार है वो हमारे सामने व्यास देव ने अति कृपा करके नारद मुनि के आदेश से प्रदान किया है। और ऐसे श्रीमद् भागवतम में कृष्ण का सदैव वास है। जब कृष्ण इस धरा से अप्रकट होने वाले थे और उद्धव को ये पता चला, उद्धव क्रंदन करने लगा कि हे प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जीवित रहूंगा, तो भगवान अपना स्वयं का स्वरूप श्रीमद् भागवतम में उद्धव के सामने स्थापित करते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव मैं ये जो श्रीमद् भागवतम है उससे अभिन्न हूं। इसलिए जैसे जैसे आध्यात्मिक जीवन में दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे हमारा अनुराग श्रीमद् भागवतम के प्रति होना चाहिए। बल्कि जिसने भी दीक्षा प्राप्त की है उसे प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से हम 16 मालाओं का जप करते हैं उसी प्रकार से भागवतम का भी अध्ययन प्रतिदिन हमारे जीवन में होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रतिदिन भागवतम का अध्ययन करते हैं या भागवतम को सुनते हैं तो व्यास देव कहते हैं भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, जो भगवत भक्ति है वो जागृत हो जाएगी और जीवन के जो शोक मोह आदि हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए पद्म पुराण कहता है बहुत जोर से गर्जना करते हुए, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेन हरिर चित्तम समाशयेत, कि व्यक्ति को सदा सेव्या सेवन करो, सेवा करो। भागवत की सेवा क्या है? भागवत की सेवा है केवल भागवतम को बैठकर एकाग्र चित्त से विनम्रता की भावना हृदय में धारण करके श्रवण करना, यह भागवत की सेवा है। और दूसरी सेवा है भागवतम की कथा का वितरण करना। गोपियों ने जो वर्णन किया है कि उससे बढ़कर कोई दानी व्यक्ति नहीं है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं नारद मुनि कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अरे श्रीमद् भागवतम का निरंतर सेवन करो, क्या होगा उससे? वो कहते हैं यशा श्रवण मात्रे न, जिसका श्रवण करने मात्र से हरिर चित्तम समाशयेत, जो भगवान हरि है उनमें हमारा जो चित्त है वो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि सारा जो हमारा कार्यकलाप है, सारी जो साधना है, दिनचर्या है, वो केवल इसी में है कि कैसे मेरा ये जो पागल मन है, चित्त है, कृष्ण में स्थिर हो जाए। और उसके लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है ये श्रीमद् भागवतम। क्योंकि भागवतम में है क्या? भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीलाएं और भगवान के धाम की जो महत्तम वर्णन है। तो ऐसे भागवतम का आश्रय व्यक्ति लेता है तो सरलता से हरि में जो चित्त है वो स्थिर हो सकता है। लेकिन कलियुगा के जीवों के लिए बहुत मुश्किल है। कलियुगा के जीवों के लिए इतना सरल साधन दिया है तो भी भगवान के बारे में सुनकर धाम में जा सकता है लेकिन फिर भी उसका अनुराग नहीं है, वो भौतिक चीजों के श्रवण कीर्तन में लगा है। तो इसलिए भागवत की जो अलग अलग कथानक है,
जैसे अभी ये आठवां स्कंद है जहां हम अभी पढ़ रहे हैं समुद्र मंथन लीला, कि किस प्रकार से ये जो समुद्र मंथन देवताओं के द्वारा और आसुरों के द्वारा किया गया है। ये समुद्र मंथन लीला भक्तों के लिए जो विशेष रूप से भगवत भक्ति में लगा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। हाँ, क्योंकि जिस प्रकार से समुद्र मंथन करने से अमृत की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार से देवता और आसुर लगे हुए थे समुद्र मंथन के लिए, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी एक समुद्र की भांति है और हमारे हृदय में मन में आदि आसुरी भावनाएं भी हैं और दैवी भावनाएं भी हैं, उनमें संघर्ष चलता रहता है। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसे समुद्र मंथन लीला के द्वारा देवता आदि जो अमृत को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए थे भगवान के आदेश पर, तो भगवान उनको कहते हैं कि क्या करो, अमृतोत्पादने यत्न। भगवान कहते हैं कि हे देवताओं, आपको प्रयास करना चाहिए, बहुत शीघ्रता से प्रयास करो अमृत को प्राप्त करने के लिए। बल्कि इसकी शुरुआत में हमने सुना है कि ये जो समुद्र मंथन की लीला शुरू होती है, दुर्वासा मुनि जब एक माला प्रदान करते हैं अपने जो शिष्य है इंद्र को, और लेकिन बृहस्पति तो ऐसी जो माला है उसका अनादर करते हैं, जो इंद्र है अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल देते हैं और अपने वो अपने पाव के नीचे उसको कुचल देता है, और ये जो उनके गुरु हैं वो अप्रसन्न हो जाते हैं और उनकी अवज्ञा या अवहेलना हो जाती है, और उसका परिणाम क्या होता है कि सारे देवतागण ऐश्वर्य से विहीन हो जाते हैं। हाँ, और कारण क्या था, अहंकार। इसलिए भगवत भक्ति में विनम्रता को स्थान है। हाँ, जो व्यक्ति में विनयशीलता है, दयनीय की भावना है, विनम्रता का भाव है, ऐसा व्यक्ति सरलता से आध्यात्मिक जीवन में शीघ्रता से प्रगति कर सकता है। लेकिन यहां जो इंद्र है उन्होंने अपने अहंकार के कारण क्या किया, अपने गुरु की अवहेलना की, जिसका परिणाम हुआ कि वो ऐश्वर्य से वीन हो गए। उसका अर्थ है पुनः मुशिक भव, इतना ऐश्वर्य विहीन हो गए कि इंद्र को रोड पर आना पड़ा, और रोड में मानो वो रहने लगे, रास्ते पर आ गए। जो स्वर्ग का ऐश्वर्य छुप छुप के सारे देवता निवास कर रहे थे, उनकी जो माता है वो बहुत दुखी हो गए थे। तो ऐसी जो स्थिति थी इंद्र की, जिसके कारण वो अत्यधिक दुखी थे, और फिर ये जब स्थिति देखी ब्रह्मा ने, तो ब्रह्मा ने कहा कि हम सबको भगवान के पास जाना होगा। और जब ये भगवान के पास जाते हैं क्षीर सागर में, और वहां भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान की स्तुतियां करते हैं, पिछले श्लोकों में आपने सुना है, और स्तुति करने के पश्चात भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही प्रकट होते हैं भगवान उनको कहते हैं, श्रुणुता वहिता सर्वे श्रेयो वर्षाद वह पुनः। वो कहते हैं कि हे देवताओं, आप क्या करो, सुनता वहिता, कि आप ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने से क्या होगा, आप अपने कल्याण को प्राप्त कर लोगे। तो यहां मानो हमारे लिए शिक्षा है, भगवान की ये जो वाणी है गीता भागवत आदि, उसको हमें श्रवण करने का मौका मिलता है, तो हमें कैसे सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से और ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामापि दुर्लभम, आप भागवतम सुनने के लिए बैठे हैं हम, तो ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। पद्म पुराण कहता है कि अरे श्रीमद् भागवतम की जो वार्ता है सुरा नामापि दुर्लभम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवतागण तरसते हैं कब हमारा सौभाग्य उदित होगा, भारत भूमि में जन्म लेंगे जहां अनुकूल है वातावरण कृष्ण से प्रीति करने के लिए, और वहां जन्म लेकर हमें जो श्रीमद् भागवत की कथा है, भगवान की जो महिमा है, गुणगान है उनको सुनने का सौभाग्य कब हमें प्राप्त होगा, ऐसी भावना ये रखते हैं, देवतागण रखते हैं। और ऐसा भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो, गीता में भी कई जगह अर्जुन को बारंबार कहते हैं कृष्ण तत् सुनो। हाँ, तो लेकिन ये बारंबार हमें बोला जाता है, लेकिन हम वैसे कि वैसे हैं, हम सुनने के लिए बैठेंगे लेकिन सारी चीजों को अपने साथ लेकर बैठेंगे। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गंभीरता से सुनना होगा। और क्या होगा, परीक्षित महाराज कहते हैं, काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय। केवल भक्त एक चीज को पकड़ अपने जीवन में कि मुझे बस श्रवण करना है, मुझे कुछ पता नहीं है, सारे आध्यात्मिक सागर, आध्यात्मिक ज्ञान का सागर, आध्यात्मिक जितने भी शास्त्र आदि है उसका सार उसके हृदय में प्रकाशित हो सकता है यदि व्यक्ति केवल एक चीज पर स्थिर रहे कि मुझे भगवान की महिमा का श्रवण करना है मृत्यु के अंत तक, मुझे कुछ अन्य पता नहीं है। इसलिए कलयुग की शुरुआत में ये उदाहरण है परीक्षित महाराज, उन्होंने सब चीजों को छोड़ा और जाकर बैठ गए वैष्णव के चरणों में और उन्होंने कहा, उस उड़ने वाले तक्षक से मुझे भय नहीं है, गायतः विष्णु गाथा। आप क्या कीजिए, विष्णु की महिमा का गान कीजिए और मुझे उसको श्रवण करना है। तो इस बात को यदि हम अपने जीवन में पकड़ के रखेंगे तो आध्यात्मिक जीवन बहुत सरल सुगम हो सकता है और भगवत प्राप्ति हमारे लिए कठिन नहीं होगी। भगवत प्राप्ति क्या होगी, बहुत सरल होगी। इसलिए भागवत बारंबार कहता है, परीक्षित महाराज भी दूसरे स्कंद में कहते, काले ना न आते दीर्घे न भगवान विशते हृदय। हाँ, तो इसी कारण से ये जो अमृत की बात हो रही है, ये अमृत ऐसा अमृत देवतागण चाहते हैं जिससे शाश्वत जीवन नहीं प्राप्त होगा, लेकिन हम देवताओं से भी सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास ये कृष्ण भावनामृत है जिसकी तुलना किसी अन्य चीज से नहीं है। इसलिए कहा गया है श्री जो 21वां श्लोक है उसमें कहा गया है, अमृतोत्पादन यत्न। भगवान सबसे पहली बात उनको कहते हैं, देवताओं आप क्या करो, अमृत को उत्पन्न करने के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो। और वो कैसे, अविलंबितम, बिना देर किए हुए तुरंत। हाँ, तो उसी प्रकार से ये जो देवतागण है, मानो भगवान कह रहे अमृत को उत्पन्न करने के लिए तैयारी करो, प्रयास करो। हाँ, तो वो देवताओं का जो अमृत है वो निकृष्ट है। हाँ, जो वैष्णव गण है, भगवत भक्त गण है, उस अमृत को तुच्छवत देखते हैं। जब शुकदेव गोस्वामी भागवत की कथा करने जा रहे थे या कथा शुरू ही करने वाले थे तो देवतागण आते हैं, अमृत का कलश लेकर आते हैं और वो शुकदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप क्या कीजिए, ये जो अमृत है, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, कि आप ये अमृत कुंभ लीजिए और ये मृत्यु को प्राप्त होने वाले ये परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन आप ये जो कथा अमृत है ना, वो किसको पिलाइए, हमें पिलाइए। मतलब देवता वैल्यू जानते हैं, कृष्ण कथामृत की महिमा और उसकी वैल्यू को जानते हैं, लेकिन हमारे समक्ष नामामृत है, कथामृत है, लेकिन उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। हम बहुत साधारण लेते हैं, अरे चलो भागवत श्रवण करना है, ये तो रोज का काम है। लेकिन वास्तव में जिस व्यक्ति ने कृष्ण को गंभीरता से लिया है या जिस व्यक्ति ने कृष्ण कथा को, कृष्ण नाम आदि को गंभीरता से लिया है, उस व्यक्ति ने कृष्ण को अपने जीवन में क्या किया है, गंभीरता से लिया है। तो ऐसे देवतागण उनको अप्रोच करते हैं और वो कहते हैं, हमें भागवतामृत का श्रवण कराइए, कथामृत का श्रवण कराइए। तो ये जो शुकदेव गोस्वामी है उनकी हंसी उड़ाते हैं। हाँ, वो कहते हैं, क्वा सुधा को कथा लोके को काचक को मनीर महान। अरे ये कहा अमृत और ये कहा कृष्ण कथा, ये तो वैसा ही है, कहा कांच के टुकड़े और मनीर महान, महान रत्न, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ब्रह्म रातो विचार एवं त तदा देवांजह सह। तो शुकदेव गोस्वामी उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको वो कृष्ण कथा नहीं प्रदान करते। क्यों नहीं प्रदान करते? अभक्तांस्ताच्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम। तो उनमें स्वार्थी या व्यापारी की भावना थी और अभक्त ही थे मानो देवतागण। तो ऐसे भक्ति शून्य होने के कारण देवताओं को वो श्रीमद् भागवत की कथा प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए वो कहते हैं श्रीमद् भागवती वार्ता सुरा नामापि दुर्लभम। ऐसी जो श्रीमद् भागवत की कथा है वो दुर्लभ है और इसी कारण से मानो ये भगवान इनको कह रहे कि अमृत प्रकट कराओ जल्दी समंदर से और आप सारी औषधियां डालो, मंदार पर्वत को मथानी बनाओ, वासुकी को रस्सी बनाओ और मंथन करो, तब आपको अमृत प्राप्त हो जाएगा। और बस धैर्य रखो, जो भी आ जाए चीजें उससे क्या नहीं होना, प्रलोभन आकर्षित नहीं होना। भगवान कह रहे कई चीजें उस मंथन से निकलेगी, सुंदरिया निकलेगी, रत्न निकलेंगे, कई चीजें निकलेगी, लेकिन उससे आकर्षित नहीं होना, स्थिर हो जाना। केवल आपका उद्देश्य क्या है? अमृत है। तो उसी प्रकार से हम भगवत भक्ति में लगे हैं और भगवत भक्ति में लगते हैं तो ये हमारे लिए मानो भगवान कह रहे हैं कि आप अपने कृष्ण भावना अमृत को जागृत करो और ये जो कृष्ण भावना रूपी अमृत है ये आपके हृदय में ही है। हृदय ही मानो समुद्र है और भगवान कह रहे हैं कि उसको जगाओ। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुने श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। हमें इस अमृत को बाहर से हृदय में डालना नहीं है, ये अमृत हमारे हृदय में है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, भगवान के बारे में श्रवण आदि के द्वारा आप इस अमृत को जागृत कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत को जागृत करने के लिए पांच चीजें हमें दी थी और उसके द्वारा ये अमृत जागृत हो सकता है। और वो क्या थी? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्तिर श्रद्धा यसेवन सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माये यही पाचेर अल्प संग। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम देवताओं का स्थान मानो ले और अपने हृदय में ये जो ओरिजिनल मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करना है तो हमें क्या करना होगा, इस पांच अंग जो है भगवत भक्ति के उनको स्वीकारना होगा। साधु संग, भगवान के भक्तों का संग करें, उनके संग में रहने के लिए दिन रात कृष्ण से प्रार्थना करें। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं उनका वो कहते हैं कि जन्म जन्म यही अभिलाष है कि मैं वैष्णवों का संग मुझे प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से साधु संग में हम बने रहेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, मथुरा धाम आदि में निवास करेंगे और बड़े ही श्रद्धा के साथ विग्रह की आराधना और सेवा करेंगे तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इनके अल्प संग मात्र से ही ये जो कृष्ण भावना रूपी जो अमृत है वो हमारे हृदय में जागृत हो सकता है। क्योंकि भौतिक अमृत हमें प्राप्त हो भी जाए तो उससे अमर हो सकते हैं, मृत्यु निश्चित है। देवताओं को भी अपना शरीर त्याग कर इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। हाँ, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ये भागवत अमृत कृष्ण कथामृत नामामृत का आश्रय लेता है तो वो सदैव के लिए कृष्ण का जो शाश्वत संग है उसको प्राप्त करता है। इसलिए गोपियां कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस संसार में जो तपे हुए जीव है त्रिन तापों से उसके लिए तो एक ही अमृत है और वो है कृष्ण कथा का अमृत। और उसको पीने के लिए हमें हमेशा तैयार होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए और उसको श्रवण करने के लिए उस अमृत को चखने के लिए बड़े एक चित्त होना चाहिए। हाँ, जैसे रसिकानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में रसिकानंद प्रभु महान आचार्य हुए हैं। रसिकानंद प्रभु ओरिसा के राजा के यहां भागवत कथामृत कर रहे थे, भागवत कथा का वर्णन कर रहे थे। वो राजा सामने बैठकर श्रवण कर रहा था, उनके कई सारे मंत्री आदि थे और बड़े गंभीरता से वो सुन रहा था भागवत की जो कथा है। तो राजा जब सुन रहा था तो अचानक राजा का जो प्रमुख मंत्री है या मैनेजर है वो आ जाता है और आकर राजा जहां श्रवण कर रहा था बैठा हुआ था, रसिकानंद प्रभु आगे प्रवचन कर रहे थे, तो वो आके खड़ा हो गया। जैसे वो जिनका नाम रामकृष्ण था और वो रसिकानंद का शिष्य भी था और उनके भक्त थे, और वो खड़ा हो गया राजा के पास, कुछ बोला नहीं। तो राजा जो कृष्ण कथा सुन रहा था, राजा ने अपना थोड़ा सा ध्यान हटा दिया और उस अपना जो मंत्री है मेन जो मंत्री रामकृष्ण जो आके खड़ा हो गया था वो भी रसिकानंद को ही सुन रहा था। तो राजा ने अपना सर ऐसे किया और उसकी ओर ध्यान दिया और सोचा कि अभी कुछ बोलेगा और मैं कुछ सुनूंगा। तो ये जब राजा ने ऐसे अपनी गर्दन की और ये भावना रखी कि मुझे कुछ अपने मंत्री से सुनना है, आगे तो कृष्ण कथा हो रही है, हाँ, तो उस समय ये जो रामकृष्ण उनका मंत्री खड़ा था उसने क्या किया, कुछ बोला नहीं राजा को। राजा की एक यहां जोर से एक थप्पड़ मार दी और इतनी जोर से थप्पड़ लगाई कि राजा उस भागवत कथा में मूर्छित होकर गिर पड़ता है। और ये जो रामकृष्ण है थप्पड़ मारने से पहले कहता है कि अरे राजा तुम कितने बड़े अज्ञानी हो, यहां अमृत का वर्षा हो रहा है, कृष्ण अमृत कृष्ण कथामृत जा रहा है और तुम अपने मैनेजर की ओर झुक रहे हो इस संसार की वार्ता सुनने के लिए। इस कारण से उन्होंने एक थप्पड़ लगा दी और राजा मूर्छित होकर गिर पड़ता है। और उस समय सारे जो अन्य जो सैनिक या मंत्री थे वो इस रामकृष्ण जो मेन मंत्री था उनको मारने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तब तक राजा जो है मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाता है और राजा सबको रोकता है और वहां सबके सामने राजा कहता है कि यहां उपस्थित सभी लोगों में जो सबसे अधिक पापी व्यक्ति है वो मैं हूं और मुझे ये दंड नहीं इससे भी बढ़कर दंड मिलना चाहिए कि साक्षात रसिकानंद प्रभु भगवान कृष्ण की महिमा का गान कर रहे हैं, भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं जो अमृत से भी बढ़कर है, और जो अन्य विषय है वो साक्षात विष है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जानिया सुनिया विष खाइनु, हम कभी कभी विष नहीं खा रहे हैं, प्रतिक्षण प्रतिदिन विष खा रहे हैं। कृष्ण के अलावा कृष्ण की सेवा के अलावा जो भी वार्ता हमारे कान में जाती है, जो भी चीज हमारे जिह्वा से निकलती है वो सारी विषमय है। विषय विषानले दीवानिशी हिया ज्वले जुड़ाइते ना दे कैनो उपाय। नरोत्तम दास ठाकुर कहते इसी कारण से तो मैं जल रहा हूं इस संसार में, इस विष के कारण जानबूझकर विष का पान कर रहा हूं। तो वो कहते हैं राजा कि मैं एक कुत्ता हूं, उतना ही नहीं वो कहते मैं एक सुअर हूं जो मल खाने में आनंद लेता है, मैं कृष्ण कथा के अलावा बाकी विषयों को सुनने में इतना आनंद लेता हूं और उसके लिए इतनी लालसा है। अब मेरा मंत्री आकर मुझे कोई कृष्ण कथा नहीं सुनाने वाला, मुझे पता है, लेकिन सुनने के लिए मैं तत्पर हो गया हूं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो एक सुअर हूं, मैं एक कुत्ता हूं और जो सारी सड़ी हुई चीजें खाते हैं कुत्ता या सुअर आदि गंदी चीजें, उसी प्रकार से मैं हूं। और इसलिए भागवतम कहता है तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंती उशिक्षया, कि जो कौवे जैसे लोग है वो कूड़े कचरे के ढेर में ही आनंद लेते हैं। कौवा हमेशा गंदी चीजें जहां कूड़ा कचरा फेंका जाता है वहां ही जाके पहुंचेगा, उसके ऊपर दिन भर रमन करेगा। हाँ, तो उसी प्रकार से यदि हम कृष्ण कथा में रमन नहीं करते, अन्य अन्य विषयों में रमन करते हैं, तो इस भव सागर में हम हमेशा के लिए बने रहेंगे। जैसे कहते हैं कि एक कौवा एक नदी में एक डेड बॉडी बहते हुए जा रहा था, कौवा उसके ऊपर बैठ गया, कुछ खा रहा था और वो जो नदी समंदर में मिल जाती है और कौवा इतना मग्न है उसमें कि वो नदी को क्रॉस करके उड़ के जा सकता था, लेकिन कब वो समंदर में पहुंच गया इतना अंदर कि अभी बाहर नहीं निकल सकता है, मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार से ये संसारिक विषय ऐसे हैं जिनमें हम धीरे धीरे कहते नहीं, थोड़ा सा प्रजल्प करता हूं, थोड़ा सा ये इनकी बातें सुनता हूं, ये करता हूं, संसारिक विषयों की चर्चा कर, थोड़े से न्यूज सुनता हूं, थोड़ा सा क्रिकेट का रिपोर्ट लेता हूं, कुछ ये बातें सुनता हूं, रिसेंट अपडेट के बारे में सुनता हूं, चर्चा करता हूं, ऐसा करते करते ऐसा होगा पता नहीं चलेगा कि ये संसार के विषय सागर में हम इतने डूब जाएंगे कि फिर से हरि नाम करने की शक्ति भी नहीं होगी, माला उठाने का सामर्थ्य नहीं होगा। भगवत कथा में बैठेंगे तो कृष्ण कथा अंदर नहीं जाएगी, सांसारिक विषय मंडराते रहेंगे, क्योंकि अभी पूरी आसक्ति उन विषयों के प्रति हो गई है। ऐसे कहा जाता है जब व्यक्ति बहुत अधिक आसक्त होता है सांसारिक विषयों के प्रति तो उसमें कृष्ण कथा घुसती नहीं है, जाती नहीं है कृष्ण कथा अंदर। धृतराष्ट्र ने भी भगवद गीता सुनी लेकिन अपने पुत्र से आसक्त था, भगवद गीता अंदर घुसी नहीं उनके। तो इस प्रकार से कहा गया है कि ये जो संसारिक विषय है जिनमें कौवे जैसे मनोवृत्ति के जो लोग हैं वो रममान रहते हैं, लेकिन जो हंस के समान है वो कृष्ण कथामृत में का पान करते हैं, कृष्ण नामामृत का पान करते हैं। इसलिए जो प्रजल्पा है वो साक्षात मृत्यु है हमारे लिए। इसलिए भक्ति विनोद रूप गोस्वामी कहते हैं, षडबीर भक्ति विनश्यति, भगवत भक्ति का विनाश होगा। तो ऐसा कहकर जो राजा है उन्होंने, वो जो रामकृष्ण उनके मंत्री थे, उनका हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा इन्होंने आज मुझे बचाया है, इसने ये प्रमाण दिखाया है थप्पड़ मार के कि मुझे सबसे अधिक प्रेम करने वाला व्यक्ति यह है। हाँ, कि मैं कृष्ण कथा से भटककर अन्य विषयों के श्रवण के लिए मैं जा रहा था लेकिन इसने मुझे बचाया है और यही मेरा असली सुरुद है, असली भ्राता है। हाँ, तो इस प्रकार से राजा उठता है रसिकानंद प्रभु के सामने और वो रामकृष्ण का आलिंगन करता है और दोनों रोने लगते हैं और राजा उनका हाथ पकड़कर कहता है कि आपने जो मुझे मारा है आपके हाथ को दर्द कष्ट तो नहीं हुआ? हाँ, तो इस प्रकार से राजा की ये भावना थी, हाँ, कि कृष्ण कथा कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मूल्यवान है, जो इस संसारिक अमृत से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इसलिए हमें ये जीवन मिला है कि ये हृदय रूपी सागर में मंथन करने के लिए हम यहाँ इस संसार में भगवान ने हमें भेजा है और हमारे हृदय का मंथन करेंगे, मन को मथनी बनाएंगे, जप माला को रस्सी बनाएंगे और नाम मानो दूध के समान है, जैसे दूध को मथा जाता है या दही को तो ऊपर मक्खन निकलता है, तो उसी प्रकार से हृदय का चरणिंग जब हम करेंगे तो क्या निकलना चाहिए, कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो उजागर होनी चाहिए और वो तभी उजागर होगी जब हम क्या करेंगे, ये जो कृष्ण कथामृत है उसका आश्रय लेंगे, दो चीजों का विशेष रूप से, नामामृत का और कृष्ण कथामृत का, जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत हमारे हृदय में जागृत होगा। इसलिए कुलशेखर आलवर कहते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक है दो, वो कहते हैं आचार्य, इदं शरीरं परिणाम पेशलं पतत्यवशं शतसंधि जर्जरं किमौषधं पृच्छसि मूढ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबम। वो कहते हैं इदं शरीरं परिणाम पेशलं, वो कहते हैं कि ये जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है ये निश्चित रूप से ये आकर्षक तो आपको लगता है, स्त्री को पुरुष का शरीर आकर्षित लगता है, पुरुष को स्त्री का शरीर आकर्षित लगता है और दोनों भोग करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कुलशेखर अलवर, अरे ये जो शरीर है इसका परिणाम है ये देहांतर होगा और पतति अवशम, इसका पतन होने वाला है, निश्चित ही ये शरीर नीचे गिरने वाला है। शत संधि जर्जरम, उसमें जो 100 से अधिक जो ज्वाइंट्स है वृद्धावस्था में आवाज करने लगेंगे, बजने लगेंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति किम औषधम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख मनुष्य तुम दवाई क्यों नहीं पूछते हो कि ये शरीर पतन होने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसके लिए दवाई क्या है? तो वो कहते हैं कुलशेखर अलवर, इसके लिए दवाई है निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। निरामयम मतलब निरोग करने वाला जो रसायन है वो ये कृष्ण रसायन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुलशेखर अलवर कहते हैं कि देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। आचर्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज विषम पिबन्ति, नामानि नारायण गोचराणि त्यक्त्वान्यवाच कुहका पठन्ति। वो कहते कि देखो आचार्य, देखो इस मनुष्य समाज में आचार्य में तद्धि मनुष्य लोके सुधा परित्यज विषम पिबन्ति, ये मनुष्य जीव लोगों में आचार्य देखो कि उन्होंने कृष्ण कथामृत को त्याग कर विष पी रहे हैं। अरे नामानि नारायण गोचराणि, ये जो नामामृत है ना भगवान नारायण का, ये अमृत है, इसको छोड़कर आप विष का पान कर रहे हो। हाँ वो कह रहे कि कितना बड़ा ये आश्चर्य है, कितना बड़ा ये अज्ञान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सदैव भक्तों को प्रेरित करते थे। हाँ महाप्रभु कहते थे यदि आमा प्रति प्रेम थाके सभाकार, यदि आप सबका सही में मुझसे प्रेम है तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाए बेयार। तो महाप्रभु कहते हैं तो आप क्या करो, कृष्ण के व्यतिरिक्त कुछ और गान मत करो, कृष्ण के व्यतिरिक्त किसी और का श्रवण ना करो। चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास लिया और शांतिपुर में आए अद्वैत आचार्य के यहां, और महाप्रभु अभी निकलने ही वाले थे, चैतन्य महाप्रभु फाइनल आखिरी उपदेश नवदीप वासियों को देते हैं और उसमें ये बात कहते हैं कि आपका प्रेम है मुझसे तो कृष्ण के व्यतिरिक्त किसी और का गान मत करो। और चैतन्य महाप्रभु उनसे एक भिक्षा मांगते हैं। क्या भिक्षा मांगते हैं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हें सब लोक मोर परम बांधव, यही भिक्षा मांगो मोरे दे तुम्हें सब। वो कहते कि आप मेरे परम बांधव हो और मैं आप सबसे केवल एक ही भिक्षा मांगता हूं, आप वो भिक्षा मुझे प्रदान कीजिए। घरे जाया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप घर जाओगे तो ये चार चीजें करो, कृष्ण संकीर्तन करो, कृष्ण नाम का उच्चारण करो, कृष्ण कथा का श्रवण करो और कृष्ण का आराधन करो, ये भिक्षा मैं मांगता हूं। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु इसके द्वारा हमारी जो सुप्त कृष्ण चेतना है उसको जागृत करना चाहते हैं। तो ये जो जागृत करने की जो विधि है जो श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है ये बहुत पावरफुल है। विशेष रूप से प्रभुपाद ने जो हमें ये मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है वो सबसे पावरफुल है। हाँ, लगभग 20 साल पहले दिल्ली में एक गौड़िया मठ के सन्यासी आते थे अब वृंदावन से, और मैं उनकी सेवा किया करता था वहां मंदिर में जब भी आते थे। तो मैंने कहा, वो वहां गेस्ट हाउस में रहते थे, तो मैंने पूछा कि महाराज आप तो गौड़िया मठ से आते हो, इस्कॉन में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? उन्होंने कहा, जो ये श्रील प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है ना, वो सबसे पावरफुल है। उसमें कोई भाग लेता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय का मंथन हो जाता है, और कृष्ण भावना कितनी भी सो रही हो उसको वो जग जाती है। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण भावना है, ये जागृत करने का ये जो पावरफुल विधि श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है, और विशेष रूप से हरि नाम का उच्चारण और कृष्ण कथा का श्रवण। प्रभुपाद ने कहा, कई सारे मंदिर हैं, वो मंदिर बेल रिंगिंग टेम्पल्स हैं, घंटी बजाने वाले मंदिर है, लेकिन मैंने ये जो मंदिर बनाए हैं, इनका केवल केवल एक में उद्देश्य है, आओ और बैठकर कृष्ण कथा का श्रवण करो और भक्तों के संग में हरि नाम का उच्चारण करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसमें बाधाएं आ सकती हैं, भक्तिमय जीवन करते करते कई सारी बाधाएं आएगी, जैसे देवताओं को भगवान ने कहा सहन करो, क्षुब्ध नहीं होना, क्रोधित नहीं होना, उसी प्रकार से भक्तिमय जीवन अभ्यास करते हुए साधना करते हुए कई विपरीत बाधाएं आएगी, उन सबको सहन करते रहना चाहिए। और जैसे देवताओं को कहा कि उद्देश्य क्या है, वास्तविक उद्देश्य अमृत प्राप्त करना है, तो उसी प्रकार से वास्तविक उद्देश्य है ये जो कृष्ण प्रेम है उसको उजागर करना है। सब चीजों को सहन करना है, बाधाओं को भी सहन करना है, और कई प्रलोभन भी आएंगे भक्ति करते हुए, मान है, सम्मान है, धन है, रेपुटेशन है, यश है, कितनी सारी चीजें आएगी, लेकिन उन सब को सहन करते हुए, आकर्षित न होते हुए उद्देश्य को सामने रखना है कि मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार, इस लाइन को सामने रखना है। प्रतिदिन महाप्रभु के सामने इसका उच्चारण करना है कि हे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु, हे नित्यानंद प्रभु, मेरे समान अत्यधिक पतित व्यक्ति ना आपको पूरे भारत भूमि में नहीं मिलेगा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते त्रिभुवन में नहीं है, और यही भावना रूप सनातन के वाक्य में भी है। महाप्रभु जब मिले रूप सनातन ने कहा, हम तो जगाई मदाई से भी अधिक पतित है, कृष्णदास कविराज आदि भी कहते हैं। तो ये भावना हमेशा रहेगी ना एक भक्त की, भक्ति का अभ्यास करते हुए, तो निश्चित रूप से वो सारी बाधाओं को पार करेगा और उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। हरिदास ठाकुर हमारे लिए आदर्श है, इतने सारे कष्ट आ गए, उनको मारा गया, 22 बाजारों में पीटा गया, क्यों आप ये नाम ले रहे हो? हरिदास ठाकुर ने कहा, खंड खंड हय जदि जाओ मोर प्राण, तबु तना वदने आमे छाड़ी हरि नाम, फिर भी मैं हरि नाम को छोड़ूंगा नहीं। और उनको प्रलोभन भी आ गया, लक्ष्य हीरा वेश्या आ गई उनको अप्रोच करने के लिए कि मैं आपका संग लाभ करना चाहती हूं, वो भी नहीं बल्कि साक्षात माया देवी आती है, उनको अप्रोच करती है कि मैं आपका संग चाहती हूं। वो कहते कि मैंने ना एक व्रत लिया है, और मेरा व्रत क्या है, हरि नाम का उच्चारण करना, ये व्रत पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगा, तब आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। हाँ, तो ये जो हरि नाम जब सुना माया देवी ने हरिदास ठाकुर के सामने बैठकर 3 दिन, तो उसके हृदय में मंथन हो गया। हाँ, वेश्या के उस माया देवी के हृदय में मंथन हो गया, और उसके हृदय में जागृत हो गया कि हरिदास ठाकुर के शरणागत हो गई। उन्होंने कहा, शिवजी को ब्रह्मा को भी मैंने मोहित कर दिया है, इस संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जिसको मैंने मोहित नहीं किया है, केवल आपको छोड़कर, और आपके शरण ग्रहण करते हो। आप क्या कीजिए, हे सनातन गोस्वामी, हे हरिदास ठाकुर, आप मुझे ये कृष्ण नाम प्रदान कीजिए। मेरे जो स्वामी हैं उनसे राम नाम मैंने प्राप्त किया था, लेकिन आप कृष्ण नाम दीजिए। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, माया दासी प्रेम मांगे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्मय। वो कहते हैं, अरे माया दासी मांग रही है कृष्ण प्रेम, ये कृष्ण भावना की याचना कर रही है। वो कहते हैं, ऐसी कृष्ण भावना उदित कैसे होगी, साधु कृपा नाम बिना प्रेम ना जन्माए। साधु की कृपा और भगवान नाम का जो उच्चारण है उसके बिना ये जो प्रेम है वो जागृत नहीं होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इतनी अमूल्य निधि हमें प्रदान की है, मतलब करोड़ों करोड़ों जन्म हम प्रभुपाद के चरणों में अर्पित करेंगे तो भी उस ऋण से हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो प्रभुपाद ने सार दिया है, और ऐसा सार दिया है सारे वैदिक शास्त्र आदि का कि एक बच्चा भी इस्कॉन में आता है तो उसको भी वेदों का सार का ज्ञान हो जाता है। हाँ, बाकियों की बात तो दूर रहे। हाँ, जो चीज श्रील प्रभुपाद ने दी है, जो अभ्यास श्रील प्रभुपाद ने दिया है, उसको यदि हम करेंगे गंभीरता से तो हमारे हृदय में एक मंथन होगा और उससे कृष्ण के प्रति जो सुप्त प्रेम की भावना है वो जागृत होगी। हाँ, इसलिए श्रील प्रभुपाद ये विशेष विशेष आचार्य है, उनकी कृपा तो हो गई है, अभी हमें क्या करना होगा, प्रयास करना होगा। इसलिए देवताओं को वो कहते हैं प्रयास करो, और वो कहते प्रयास ऐसा नहीं कि बहुत समय के बाद प्रयास करो, भगवान कहते तुरंत करो प्रयास, अविलंबित आनी, विलंब मत करो। तो उसी प्रकार से हमें हमेशा मृत्यु को सामने रखना चाहिए और सोचना चाहिए, आज का आखिरी सोला माला है, आज का भागवतम क्लास आखिरी है, आज का प्रसादम आखिरी है, आज का वृंदावन यात्रा आखिरी है, रोज इस भावना से जीना चाहिए। और ऐसा जिएंगे तो ये जो कृष्ण के प्रति सुप्त चेतना है ना, वो टाइम नहीं लगेगा, शीघ्रता से जागृत हो जाएगी, क्योंकि ये सर्वोच्च चीज हमें कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान की है। नाम बिना किछु नाही कार, चौदह भुवन माझे। हाँ, ये जो नामामृत हमें प्रदान किया है वही चीज सनातन गोस्वामी ने एक ब्राह्मण को दी थी, पारस पत्थर की जगह भगवान का नाम दिया था। तो ऐसा नाम को हम लेंगे गंभीरता से और उच्चारण करेंगे, इस नामामृत से दूर नहीं हटेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में ये मंथन होगा और मंथन होकर कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो जागृत हो जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के, श्रील प्रभुपाद के नितय।